رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دیکھتے ہیں ہم تفسیر آیت نمبر 22 سے 40 تک سورۃ النحل. اس سے پہلے ہم نے اس سورت میں کیا پڑھا؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں دیکھی جو کہ ہم پہلے بھی دیکھتے تھے، ان نشانیوں سے گزرتے تھے، مگر یہاں پر قرآن پاک میں ان کو اس لیے ذکر کیا گیا کہ انسان ان کے اوپر غور و فکر کرے اور ان سے اپنے رب کو پہچانے. کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، مگر اس کی نشانیوں سے، یہ سب جو ہے نا یہ آیات ہیں، ایک آیت قرآن پاک میں اور ایک آیات جو یعنی آفاق میں اور انفس میں، اللہ تعالیٰ نے دونوں نشانیاں رکھی، انفس یعنی ہماری جانوں میں نشانیاں ہیں، ہم کیسے پیدا ہوئے، ہمارا مرنا، ہمارے جو ساری آرگنز ہیں، ہم جو جس طرح سے ہم ہماری زندگی ہے اس میں سب میں نشانی ہے. اسی طرح آفاق میں یعنی یہ کائنات کے اندر نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بکھیری ہوئی ہیں، اور ہر نشانی اپنے بنانے والے کا پتہ دیتی ہے. اب آپ کا کام کیا تھا اس میں؟ سبق تو بہت آسان تھا، لیکن آپ کا کام یہ تھا، اور امید ہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہوگا، کہ آپ نے رنگوں کو دیکھا ہوگا. اور میں نے آپ کو کہا تھا نا، ایک نظر دیکھیں اپنے سامنے، جو بھی سین ہے، آپ باہر نکلیں، اپنے سامنے آسمان ہے، زمین ہے، اس کو ایک نظر بھر کے دیکھیں، اور پھر اگر آپ لکھنے لگیں کہ کتنے رنگ ہیں جو آپ کی ایک نظر میں آ رہے ہیں، اور کتنے شیڈز ہیں ہر رنگ کے، تو آپ لکھ نہیں سکتے، آپ حیران ہو جائیں گے. یہ نشانیاں گو کہ ہم جب سے دنیا میں آئے ہیں دیکھ رہے ہیں، مگر اس نظر سے دیکھنا کہ ان سے رب کی پہچان ہو جائے، اس نظر سے دیکھنے کا قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں خود نہیں پتا تھا. اس سے پہلے بے شمار دفعہ ہم گزرتے رہے، رنگوں کو دیکھتے رہے، مگر ہم نے کبھی ایسے نہیں دیکھا ہوتا جیسے قرآن ہمیں سکھاتا ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں. لہٰذا ہمارا یہ انہی آیات سے ہمارا ہوم ورک یہی ہوتا ہے کہ ہم جو آیات پڑھتے ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ ان کو پریکٹیکلی ہم نے کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ پورے ویک میں کیا کریں. ہم پڑھ تو لیا، کس نے نہیں سورج دیکھا ہوا؟ ایک وہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی سورج دیکھتا ہے، وہ بھی دن اور رات دیکھتا ہے، وہ بھی چوپایوں کو دیکھتا ہے، انعام کو دیکھتا ہے، وہ بھی رنگوں کو دیکھتا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ میں، کسی نے مجھے پیدا کیا ہے، میں خود تو نہیں پیدا ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا. لیکن اس میں اور ایک مومن کی نظر میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، بتائیں. ایک وہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، ایک وہ انسان جس کی فطرت سلیم ہے، اس کی فطرت میں کوئی کرپشن نہیں ابھی ہوئی، اس کی نظر میں اور ایک کافر کی نظر میں بہت فرق ہونا چاہیے. اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اسی طرح گزرتے رہیں جیسے کافر گزرتا ہے، تو پھر میری اور اس کی نظر میں کیا فرق رہ گیا؟ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ جب آپ گزرو سیرو فی الارض، کے ابھی بھی آ جائے گا آج کے سبق میں، دیکھو، گھومو، پھرو، چلو، پھرو، دیکھو اللہ کی نشانیاں. کئی نشانیاں دیکھ کے اللہ کو پہچانو، کئی قوموں کو انجام دیکھ کے اللہ تعالیٰ کو پہچانو. تو یہ صرف پڑھنی ہی نہیں ہے، ان کو اس طرح پریکٹیکلی اپلائی کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے. حالانکہ کوئی ایسا چیز نہیں کہ آپ کہیں کہ کون سا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے اس کے اندر، اس میں روزہ رکھنے کا حکم نہیں، لیکن اس میں غور و فکر کا حکم ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو غور و فکر کر کے ان پہ عمل کیا کریں. صحابہ تو اگلے سبق ہی نہیں لیتے تھے جب تک ان آیتوں پہ عمل نہیں کر لیتے تھے. آج کا جو سبق ہے، اور آیت نمبر 89 تک ہم یہی دو ٹاپکس ہیں جن کو ہم لے کر ساتھ چلیں گے. ایک ہے توحید کا اثبات، توحید کی وہ बताया गया और शिर्क की नफी की गई, शिर्क का इनकार किया गया और मुशरिकीन के इतराजात के जवाबात दिए गए। जैसे कि आपने स्टार्ट ऑफ द सूरा में देख लिया था कि इसका मतलब कोई ना कोई वो उन्होंने सवाल किया, वो कोई इतराज किया होगा, उनका सवाल या इतराज नहीं मेंशन किया गया लेकिन उसका जवाब दे दिया गया। आज के सबक में हम क्या देखेंगे? बहुत अहम एक टॉपिक देखेंगे, एक काफिर का दुनिया से जाना और एक मोमिन का दुनिया से जाना कितना फर्क होता है वो देखेंगे, और तौहीद को भी हम देखेंगे। और हमने पहले आला अल्लाह से यानी अल्लाह की जो निशानियां हैं, नेमते हैं, उनसे अल्लाह ताला की पहचान की। अब भी अय्यामिल्लाह यानी वो दिन जिनमें कौमों के ऊपर कोई अजाब आए उनसे भी अल्लाह ताला को पहचानेंगे। तो देखते हैं आयत नंबर 22 से। नऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा इलाह जो है ना बस एक ही है, एक ही इलाह है जिसकी प्रैक्टिकली हम क्या, जिस तरह से हम बोल के इस बात को कैसे कहते हैं, ला इलाह इल्लल्लाह, वो है इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। पैगंबर बेशुमार आए, सहाबा बेशुमार हैं, ताबईन बेशुमार, औलिया अल्लाह बेशुमार, लेकिन तुम्हारा रब सिर्फ एक है, दो नहीं है। और यही वो अकीदा है जिसके अंदर शैतान की बहुत ज्यादा कोशिश होती है कि इसमें कोई मसला डाले। इंसान के ऊपर अगर कोई मुश्किल आ जाती है तो कहता है क्या तू, मुश्किलों से तुझे तो कोई निकालने ही नहीं आया, कहाँ है खुदा, कहाँ है वो। ठीक है, कोई अल्लाह रसूल को मान भी जाए ना तो अगला उसका अटैक क्या होता है कि वैसे ना माने जैसे पैगंबर ने बताया। और ये बहुत जरूरी बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, खुदा का मानना बहुत सारे लोग मानते हैं, ये जो मुशरिक है ना ये भी मानते हैं कि कोई खुदा है। ठीक है, तो हमारा सिर्फ ये नहीं है फोकस इस बात के ऊपर कि खुदा है कोई, खुदा एक ही है, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए, एक है वो। वो मान तो लेते हैं, इसी तरह बहुत सारे मुसलमान भी ये मान तो ले रहे हैं कि हाँ खुदा है, लेकिन उस खुदा के साथ ही औरों को भी खुदा बनाए रखते हैं। बहुत सारे लोगों के अकीदे खराब होते हैं यहीं पे आके, अल्लाह को तो मान लिया मगर वैसे नहीं माना जैसे पैगंबर ने बताया आके। ठीक है, मानना वैसे है जैसे पैगंबर ने हमें बता दिया, तालीम दे दी कि अल्लाह ताला ऐसे है और रब ने खुद बता दिया कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। ये है मनहज, इसको क्या कहते हैं, मनहज, तरीका, किस तरह, रास्ता। तो इंसान इस मनहज के मुताबिक अल्लाह पर ईमान लेकर आए फिर उसका अकीदा सही होता है। हमने मान लिया कि एक खुदा है, चलो मान लिया, उसके बाद खुद ही अपनी तरफ से कुछ और मनहज बना लिया जैसे शैतान ने बताया या दूसरे इंसानों ने, शैतानी किस्म के इंसानों ने बताया, वैसे मान लिया तो वो काबिले कबूल नहीं है। और शैतान का यही पहला वार है कि इंसान तो अल्लाह रसूल को ना माने, कुरान को ना माने, ये तो सीधा सीधा कुफर हो गया ना। दूसरा फिर अगर वो मान लेता है तो फिर यहां पे आके अटैक करता है कि वैसे ना माने जैसे रसूल ने बताया। इसीलिए आज इस मनहज में बहुत सारे लोगों ने ठोकर खाई है, बहुत सारे लोग अल्लाह ताला को वैसे नहीं मानते जैसे रसूल ने बताया, अपनी मनमानी उन्होंने चीजें बनाई हुई है। और इसी वजह से अकीदे को सीखना बहुत जरूरी है। मसलन कह देंगे कि अल्लाह ताला का हाथ नहीं, हाथ यादुल्लाह की जब बात आती है तो वो उसकी कुदरत है, उसका हाथ तो है ही नहीं, जब अल्लाह ताला फरमाता है हाथ, तो हमने कहना है हाँ अल्लाह का हाथ है, उसका चेहरा है, उसकी पिंडली है, ये सब अल्फाज कुरान में है, वो है लेकिन कैसे हैं। वो कहते हैं अगर आपने हाथ मान लिया तो हमारे हाथ जैसा हो गया। हम अल्लाह का गुस्सा नहीं मानते, क्योंकि अगर गुस्से में वो आ गया तो जैसे हम गुस्सा करते हैं तो हमारे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हमारे नथने फूल जाते हैं, हमारी रगें फूल जाती हैं, हमारा चेहरा सुर्ख हो जाता है। तो हमने कहना ही नहीं है अल्लाह को गुस्सा आया, इसलिए कि अल्लाह ताला को ऐसे कह दिया तो फिर उसके लिए भी यही मानना पड़ेगा। हम और फिर वो क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला किससे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि जैसे हम मोहब्बत करते हैं हम अपनी मोहब्बत में मजबूर हो जाते हैं, तो क्या वो मजबूर हो जाएगा। ये सब बातें गुमराही की बातें, देखिए कैसे शैतान आके मनहज के अंदर रखने डालता है, उसको खराब करता है। हम कहते हैं हाँ अल्लाह का हाथ भी है, उसकी पिंडली भी है, उसका चेहरा भी है, लेकिन जैसे उसकी शान के लायक है। अल्लाह ताला गजबनाक भी होता है, क्योंकि कुरान में है जिन पर अल्लाह गजबनाक हुआ। अल्लाह ताला मोहब्बत भी करता है, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम करते हैं, जैसे उसकी शान के लायक है। ये हमारा अकीदा होना चाहिए। और यहाँ पे बड़े लोगों के फिरके बने और उन्होंने तरह तरह के अपने रास्ते बना लिए, और इस तरह से जो सही अकीदा है उससे हट गए। तो अल्लाह ताला के बारे में भी हमें सही अकीदा होना चाहिए। अल्लाह ताला हर जगह, इस कमरे में भी अल्लाह, उधर भी अल्लाह, उधर भी अल्लाह, तो क्या ये क्या अकीदा है। हम कहते हैं अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वो अर्श पे मुस्तवी है। कैसे है, जैसे उसकी शान के लायक। हमें कैफियत नहीं पता, हम बस ये कहेंगे जो कुरान में है कि अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी है। हाँ वो अपनी कुदरत, अपनी इल्म, अपनी समात बसारत, उसके लिहाज से हर जगह पर, अपनी सिफात के लिहाज से हर जगह को अल्लाह ताला जानता है। उसकी कुदरत हर जगह पे है, उसका इल्म हर जगह पे, लेकिन वो अपनी जात के लिहाज से हर जगह पे है, ये गलत है कहना। वो अर्श पे मुस्तवी है, इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए, कि यहीं पे अल्लाह होता इस कमरे के अंदर, इस जगह उस जगह, तो फिर क्यों जाना पड़ता था उनको। और अल्लाह ऊपर है, इसीलिए इंसान भी ऊपर को हाथ उठाता है, उसकी फितरत में है। तो बहुत जरूरी है कि हम अकीदे की इन बारीकियों को समझें, और बहुत सारे लोग इनमें गुमराह होते हैं। तो इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा इलाह सिर्फ एक है, सिर्फ एक ही तुम्हारा इलाह है। और यहाँ पर आकर फिर शैतान कहता है कि नहीं वो भी है जिससे, जिसके पास कुछ पावर है, और वो भी है, और वो भी है। और आप इससे पीछे देखें ना, उन आयात के साथ ये आयत कनेक्टेड है कि वो लोग जो पुकारते हैं, पुकारने इबादत की बात नहीं आई, वल्लदीन यदअउना, जो पुकारते हैं, दुआएं करते हैं, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा औरों से। अल्लाह के सिवा और में क्या आ गया, अल्लाह के अलावा हर चीज आ गई ना। चाहे वो कोई बुत है, चाहे वो कोई नबी है, चाहे कोई औलिया अल्लाह है, चाहे राम सीता या कोई नबी, कोई ईसा अलैहि सलाम है, नबी अलैहि सलातो वसलाम है, सब मिन दूनिल्लाह है, अल्लाह के सिवा है। अल्लाह ताला के अलावा हर चीज, जिसको भी कोई पुकारता है, वो ना तो वो कुछ पैदा कर सकते, वो खुद पैदा किए गए हैं, वो मुर्दा है, जिंदा नहीं है, और उनको ये भी शऊर नहीं है कि वो कब उठाए जाएंगे। चार सिफात सब में आ गई, तो सब हर तरह की शिर्क की नफी अल्लाह ताला ने कर दी यहाँ पे, और बता दिया कि तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती कि तुम्हारा इलाह सिर्फ एक है। फल्लदीन ला युमिनून बिल आखरती, जो लोग आखरत पर ईमान नहीं रखते, कुलूबुहुम मुनकिरा, उनके दिल इनकारी हैं, उनके दिल नहीं मानते। क्योंकि देखिए जो ईमानियात है ना, वो सारी अटैच्ड है अल्लाह पर ईमान, आखरत पर ईमान, रसूलों पर, किताबों पर, तकदीर पर, मलाइका पर, सब ये सारे ईमानियात अटैच्ड है। एक का भी इनकार दूसरे का इनकार है। आखरत पर जो ईमान नहीं रखते वो अल्लाह ताला का भी इनकार कर देते हैं, उनके दिल अल्लाह ताला के भी इनकारी होते हैं, और वो तकबुर करने वाले, मुस्तकबिरून, इस्तिकबार करते हैं। तो इलाह तो एक ही है, और अल्लाह ताला ने निशानियां हमें पहले दिखा के और इस चीज को साबित किया कि देखो अगर एक से ज्यादा इलाह होते तो ये कायनात ना चल सकती। इनका बनाने वाला भी एक, इनका चलाने वाला भी एक, तो फिर इबादत भी उस एक की ही होनी चाहिए, इला भी वो एक ही है। इला की डेफिनेशन जो है ना वो उर्दू में हम नहीं कर सकते, इसलिए कि इसके लिए कोई एक वर्ड नहीं है इलाह के लिए कि कोई एक वर्ड हो, मगर इलाह का मतलब यह है कि जिसकी हकीकी तौर पर जो इबादत के लायक है, बंदगी के लायक है, जिससे आप सारी अपनी उम्मीदें अटैच करते हैं, जिससे सबसे ज्यादा खौफ रखा जाए, जिससे सबसे ज्यादा कुदरत का मालिक जिसको समझा जाए, यानी खौफ मोहब्बत इबादत, इसमें एक उसी को सबसे टॉप के ऊपर वो ही है, उसके अलावा कोई नहीं। और आखरत पर जो ईमान नहीं रखते वो ही एक से ज्यादा खुदाओं की बात करते हैं या झूठे खुदाओं की बात करते हैं। और वो कैसे लोग हैं, वो बड़े खुश होते हैं औरों का जिक्र करके, जैसे कोई ढेरी, कोई फलां कबर, कोई करामतों वाला, वो करनी धरनी वाले, वो बड़े फलां, वो बड़े पहुंचे हुए, ये करते हैं। और उनको तौहीद समझ नहीं आती क्योंकि आखरत का कॉन्सेप्ट उनके अंदर वाजे नहीं है। आखरत का मुशरिकीन में ना एक बड़ा मसला था, वो कहते थे जब मट्टी हो गए तो कहां किसने उठाना है। जब आखरत का कॉन्सेप्ट ही सही नहीं होता तो फिर, या उनको ये था कि हमारे यही सिफारशी हैं, यही अल्लाह के यहाँ भी हमें छुड़ा लेंगे, जब आखरत में मसला होता है ना तो फिर वो जाके उन सिफारशियों के आगे ही माथा टेकेंगे, उन्हीं को खुश करेंगे, फिर अल्लाह ताला को खुश करने की क्या जरूरत है। फिर चादरें भी आप उनके पास ही चढ़ाएंगे क्योंकि ये राजी हो गया तो हमारी बिगड़ी बन गई, हमारी आखरत सही होगी। तो बेसिकली आखरत के कॉन्सेप्ट के अंदर मसला है, उसकी वजह से तौहीद में भी मसला आता है। आखरत के कॉन्सेप्ट में क्या मसला है कि आखरत का कॉन्सेप्ट वाजे नहीं कि वहां कोई नहीं छुड़ा सकता, वहां कोई मेरी बिगड़ी नहीं बना सकता, वहां पे कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, एक अल्लाह ही है जिसके आगे मुझे खड़े होना, वहां मैं किसी का दामन पकड़ के मैं पार नहीं हो सकती। जब जब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है ना तो पीछे देखें सारा खराब हो जाता है अकीदा तौहीद। समझ आ गई कि कैसे आखरत के अकीदे से, आखरत के अकीदे में खराबी से तौहीद का अकीदा भी खराब हो जाता है। ठीक है, और आखरत में क्या क्या शामिल है, जो मरने के बाद जो कुछ है ना वो सब आखरत है, चाहे वो कब्र है, चाहे वो हशर है, चाहे वो मीजान है, चाहे वो हिसाब किताब है, चाहे वो पुलसिरात है, ये सब ईमान का हिस्सा है। तो जिनके अंदर आखरत पे ईमान नहीं है या आखरत के ईमान में वैसा ईमान नहीं जैसा, याद रखिए एक चीज होती है ईमान लाना किसी चीज पे, एक है हमारे से सिर्फ ये रिक्वायर्ड नहीं है कि हम सिर्फ ईमान लेकर आए, हमारे से रिक्वायर्ड ये है कि हम वैसा ईमान लेकर आए जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आके बताया। मुशरिकीन भी, बाज मुशरिकीन देखे ना, ईमान रखते तो थे आखरत पे, वो कहते ही थे ना कि आखरत में हमें ये छुड़ाएंगे, इसका मतलब उनका ईमान तो था कि आखरत कोई है, था ना। बाज ऐसे थे जो बिल्कुल ही नहीं मानते थे, वो कहते थे मट्टी हो जाएंगे तो उठेंगे नहीं, एक बाज लोगों का ये ईमान था। बाज मुशरिकीन का ये था कि नहीं उठाए तो जाएंगे लेकिन ये लोग हमें छोड़ा लेंगे। तो यानी आखरत पर ईमान वैसा होना चाहिए जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने बताया, अल्लाह पर ईमान वैसा होना चाहिए जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझा दिया, रसूलों पे ईमान वैसा होना चाहिए जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। समझ आ गई बात की नहीं है, ये बहुत जरूरी बात है। नॉट ओनली कि हम कह दें हमारा ईमान तो है, हमारा ईमान तो है इज नॉट इनफ, आपका ईमान वैसा होना चाहिए, क्या वैसा है जैसा नबी अलैहिस्सलाम ने समझा दिया। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको वाजे करना चाहती हूं। तो इसलिए याद रखिए, सिर्फ ये कह देना काफी नहीं कि मैं ईमान रखती हूं। ईमान कैसा रखती है, ईमान तो वो भी रख रहा है, वो भी कोई भी, आप वो काफिर से भी पूछ रहे, वो भी कहता है हेल और हेवन है, तो व्हाट, उसने अपना ही एक तरीका बनाया हुआ आखरत का, उसने अपना ही कोई कॉन्सेप्ट है उसके जहन, तो मैंने भी कहीं खुद ही से तो नहीं बना लिया हुआ। ये बहुत जरूरी है कि हम जाने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया आखरत के बारे में। जो उन्होंने बताया वही हर्फ आखर है, फाइनल। उसके बावजूद कई लोग अगर ये समझें कि कब्र का अजाब कोई चीज नहीं होता, कब्र में कुछ सवाल जवाब नहीं है, कब्र का हिसाब किताब कुछ है ही नहीं है, तो फिर क्या है उनका, उसका मतलब खुद ही अपना आखरत का कैदा खुद ही बनाया हुआ। वह मुस्तकबिर ना, वो तकबर करते हैं। तकबर होता क्या है, हम ना बहुत लिमिटेड हमारा कॉन्सेप्ट है तकबर के बारे में। हम समझते हैं तकबर ये है कि वो देखो उसने बड़ी गाड़ी ले ली ना, बड़ी मुतकबिर हो गई है, ये समझते हैं ना सिर्फ तकबर को। बड़ा अपने आप को समझना शुरू हो गई, ठीक है ये भी तकबर है कि इंसान को कोई नेमत मिल जाए तो उसके बाद वो दूसरों को हकीर समझने लगे। लेकिन तकबर की जो डेफिनेशन है ना वो है बतरुल हक व गमतुन नास। बतरुल हक का मतलब क्या, हक का इनकार कर देना, जो सही बात है जो सच बात है उसका इनकार करना, और गमतुन नास वही मीन तो से यानी लोगों को हकीर समझना। तो ठीक है वो भी तकबर कर रहा है जिसने बड़ा घर ले लिया और वो अपने आप को बड़ी चीज समझ रहा है, वो भी तकबर कर रहा है जो ब्रांड नेम कपड़े पहन के दूसरों को खातिर में ना लाए, वो भी तकबर करता है जो अपनी जात और बरादरी को ऊंचा समझे, अपनी जुबान बोलने वालों को ऊंचा समझे और दूसरों को ये क्या चीज है, और वो भी तकबर कर रहा है जो बड़ी गाड़ी में बैठ के अपने आप को पता नहीं क्या फिरौन समझने लगता है। लेकिन ये भी तकबर है कि इंसान हक का इनकार करे, जब हक उसके सामने आ गया, जब बता दिया ये कुरान में है ये हदीस में है, तो वो कहे नहीं जी मुझे तो नहीं, मैं नहीं बात समझती सही, मैं तो नहीं इसको मानती, ये तकबर का रवैया है। वेरी फ्यू पीपल नो कि ये तकबर का रवैया, ये तकबर होता है, समझ आई बात। तो इनकार से जो सही सच बात है हक बात है ना, इसलिए मैं सही सच कह रही हूँ क्योंकि बाज लोगों को हक ही नहीं समझ आता हक क्या, मैं वहां हक कहते रहूं और आप को अगर समझ ही नहीं आ रहा हक क्या चीज होती तो आप कहें पता नहीं क्या कह रही। तो जो सच्ची बात है उसका इनकार, जो सही बात है, और सबसे सच्ची बात किसकी हो सकती, अल्लाह और रसूल के सिवा और किसकी बात सबसे ज्यादा सच्ची हो सकती, उन्हीं की तो सबसे सच्ची बात, तो उनकी बात का इनकार कर देना यह हक का इनकार करना। और दूसरा लोगों को हकीर समझना। अब कोई देखा कोई खड़ा होकर ये नहीं कहता कि मैं तो अल्लाह ताला का इनकार करता हूं, वो रसूल का इनकार करते थे, रसूल की बात का इनकार करते थे, वो सोचते थे ये क्या चीज है ये हमें बताएंगे आप, हदीस में आता है सुभान अल्लाह, ये बहुत समझने वाली बात है, याद रखिएगा इस हदीस को कि फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी के लिए काफी है उसके बुरा होने के लिए कि वो अपने किसी भाई को अपने से हकीर समझे। या अल्लाह तुम हमें माफ कर देना, आदमी के बुरा होने के लिए क्या काफी है बताएं, क्या काफी है आदमी के लिए बुरा होने के लिए, चाहे वो बड़ा अपने आप को नेक साले पाकबाज तहज्जुद गुजार नमाजी परहेजगार मुत्तकी कुरान पढ़ने वाले कुरान के स्टूडेंट कुरान की टीचर फलां बड़ी अपने आप को चीज समझे, लेकिन उसके बुरा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो अपने किसी भाई को अपने से हकीर समझे। ये हकारत, चाहे वो अपनी नेकी की बुनियाद पर हो कि पर्देदार जो खवातीन है जिसने हिजाब ले लिया अबाया पहन लिया वो हकारत से देखे दूसरों को ये क्या चीज है, या वो जो मॉडर्न है वो समझे ये क्या बड़ी पर्देदार बनी फिर रही है पता है इनके करतूतों का, ये क्या है हकीर समझना। यहाँ जो मस्जिद से निकला है वो दूसरों को देखे और ये क्या चीज है, मस्जिद भी नहीं जाते, या जो जिस जो किसी खास जात बरादरी से वो ये कहे और ये क्या चीजें हैं ये कुछ नहीं है इनकी कोई हैसियत नहीं। तो इंसान के बुरा होने के लिए तेरे लिए इतना ही काफी। अब ये चाहे माल में है चाहे घर बार में है चाहे खानदान कुंबे कबीले बरादरी जुबान इल्म अमल दीन किसी बुनियाद पे भी, नेकी किसी बुनियाद पे भी, जब आपने सोच लिया ना या आपकी बातों के अंदर ये बात है कि ये क्या चीजें हैं, तो इट मीन्स कि आपने अपने आप को बड़ा बना ही लिया ना, अपने आप को नेक समझ ही लिया। दाढ़ी वाला वो कहता है ये क्लीन शेव वाला क्या चला फिरता है, ये क्या चीज है, ये नेकी का तकब्बुर है। एंड समटाइम्स वी डोंट इवन रियलाइज कि हमें नेकी का तकब्बुर आ गया। हफ्स सलम ने फरमाया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। राई का दाना कितना होता है, पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक जिसको आप देख भी नहीं सकते, इतना सा तकबर भी, अल्लाह हमें माफ कर दे। जो हमारी बातें होती हैं ना, बाज दफा ऐसी होती हैं कि जिनमें तकबर की बू होती है, स्मेल, जब हम दूसरों को हकीर समझ रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं उनके ऊपर, फलां ऐसी, वो ऐसी, तो असल में हकीर ही समझा ना, मैं बहुत बड़ी शय हूं, एक्चुअली अपने से कंपेयर किया ना, और क्या। अगर मैं खुद को भी अपने आप को हकीर समझ रही थी तो थोड़ी मैं कहती कि वो ऐसी है। मैंने तो कहना था कि मैं खुद क्या हूं, लेकिन मैं अपने आप को इतने ऊंचे पेडिस्टल पे बिठा लूं और दूसरों को सोचूं कि हाँ वो देखो जरा कैसे। याद रखिए एक बात, इसको ना जहन में बिठा लें इस बात को, वो नेकी जिससे तकब्बुर पैदा हो जाए, वो नेकी जिससे तकब्बुर पैदा हो जाए ना, उससे वो गुनाहगार बेहतर है जो आजिजी से झुका हुआ है। क्या मतलब? यानी ये जो खुद को नेक समझ के बड़ा बनना होता है ना, इससे वो गुनाहगार बेहतर है जो पता नहीं अपने रब के सामने कितना रोता हो, कितनी उसके शर्मिंदगी हो। वो कहता है मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं कितना घटिया हूं, सारे बड़े बड़े नेक हैं, मैं कितना छोटा हूं। उसकी पत्नी आजी अल्लाह को कितनी पसंद आ जाए, मगर इस नेक आदमी की नेकी नहीं पसंद आएगी अल्लाह को, जो फूलता फिर रहा है। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने शुरू हो गया, कुरान क्या पढ़ना शुरू कर दिया, 4 दिन हुए नहीं, वो अपने आप को समझते हैं जो सारा मेरे घर के लोग भी, ये मेरी फैमिली भी, हाय हाय ये कितने घटिया और गंदे हैं, और मैं कितनी नेक हूं ना, देखो। तहज्जुद के लिए तो ये उठते ही नहीं है, कुरान तो ये पढ़ते ही नहीं है, पता नहीं क्या है ये तो जाहिल, ये तो ये। अल्लाह अकबर, हमें इल्म लेने के बाद ना तकब्बुर नहीं हमारे अंदर आना चाहिए। अगर वाकई हमारे अंदर सच्ची इल्म आया है ना, वाकई हमारे अंदर हमने कुछ सीखा है ना, बस ऊपर ऊपर का नहीं, वाकई हमारे अंदर अगर कुछ गया है ना, तो ये हमें झुका देगा, ये हमें आजीज बना देगा, आजी आएगी। और अगर हमने ये शैलो इल्म लिया ना, बस बातें ही हैं, बड़ी बड़ी बातें हमें करनी आ जाएंगी, लेकिन तकब्बुर आएगा फिर। इल्म का भी तकब्बुर होता है, नेकी का भी तकब्बुर होता है, दीन का भी तकब्बुर होता है। आप सोचते होंगे कि दीन वाले तो बड़े अच्छी बात है, लेकिन इसका भी तकब्बुर होता। मैं जानती हूं किसी को कि उसमें इतना खौफ खुदा है कि वो किसी की भी तकलीफ हो ना तो फौरन तड़प के मदद के लिए ऐसे लोग दौड़ते हैं। कोई एक फर्द की बात है, मगर फौरन, और खौफे खुदा इतना बेईमानी से डरते हैं, झूठ से डरते हैं। बस नमाजें वाजिबी हैं जितनी है, 5 वक्त की नमाजें, कोई तहज्जुद का गुजार नहीं है, को बहुत तस्बीहें करने वाले, जिक्र करने वाले, इस तरह नहीं है, लेकिन उनमें खौफे खुदा है, सिला रहमी करते हैं, लोगों के साथ रहम का मामला करते हैं, हलाल खाने के लिए एहतमाम करते हैं, लेकिन उनके सरों पर टोपियां नहीं है, उनके उनकी हाल हुलिया ऐसे नहीं है कि वो लोग देख के उनको बड़ा नेक समझे, मगर वो रोते हैं अपने रब के आगे, और वो अपने आप को कहते हैं कि ना हमारे पास तो कुछ भी नहीं। तो लोग सोचते हैं कि ये क्या चीज है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, मगर वो लोगों को धोखा देने से डरते हैं, वो नरम बात करते हैं, उनके अंदर रहम दिली है, वो फराइज अदा करते हैं, बहुत नवाफिल के अंदर नहीं है, लेकिन सीधी सीधी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन दूसरे सोच के क्या सोचते हैं, हम तो बड़े नेक हैं, इसमें क्या नेकी है। अल्लाह ताला ना आजी का इजहार देखना चाहता है इंसान में। अगर ये पढ़ लिख के हमारे अंदर आजी खत्म हो गई और खुद पसंदी आ जाए कि मैं बड़ी चीज हूं, खुद पसंद, उजब क्या होता है, उजब, उजब इसको कहते हैं, खुद पसंदी को, कि अपना आप बहुत बड़ा लगना शुरू हो जाए, तो दिल में राई के दाने के बराबर भी अगर ये ख्यालात हैं ना, तो जन्नत में नहीं जा सकते, जन्नत में नहीं जा सकते। बात ये कि इंसान अपने आप को ये समझे कि मैं कोई चीज नहीं, हमने कहां से समझ लिया कि हम बड़े नेक हैं, कभी नेकों की बातें सुनी भी हैं कि क्या होती हैं, हमने असल में अंधों में काना राजा वाली बात है, 4 लफ्ज क्या पढ़ लिए बस हमने समझ लिया, अब हम जाहिलों में बैठे हुए तो समझते हैं हम बहुत बड़ी चीज बन गए, वो उनको एक भी नहीं लफ्ज आता, हमें एक आ गया, हमने उसमें ही अपने आप को पता नहीं क्या समझ ली, तो खुद को ये नहीं देखे, खुद को देखें कि क्या मंजिलें हैं जो नेकों की थी, जो सालेहीन की थी, उनके तरीके क्या थे। उनको तो किसी के जूते उठाने में भी आर नहीं होती थी, वो तो किसी गरीब मिस्कीन के घर जाते भी आर नहीं समझते थे। उसके काम करने में अबू बकर सिद्दीक जैसे, वो अशरा मुबशरा उनके जैसे आदमी, वो एक बुढ़िया के घर जाके उसके घर का काम कर रहे हैं, उनको तो नहीं शर्म आती थी। हम में से कितने लोग हैं जो अपने किसी आज तक नौकर के घर में भी हमने कदम रखा होगा। यार रब हमें माफ कर दे, हमारा अगर सिर्फ इसके ऊपर ही बात आ गई कि हमारे दिलों में क्या था, तो हम तो पता नहीं इस पे भी पास ना हो सके। हमारे अंदर कितना तकबर भरा हुआ है, अपनी बड़ाई भरी भी, किसी को किसी चीज का तकबर है। हमारी तो जो हमारी जिस जिस जगह से, जिन कंट्री से हम बिलोंग करते हैं ना, वहां पे तो ये भी तकबर बहुत ज्यादा कि हम तो ये जुबान बोलने वाले, या हम तो इस जात बरादरी से हैं। माय गॉड, ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं है आप क्या दुनिया आसमान से उतर के आई कोई मखलूक है, और दूसरे ऐसे लगते हैं ये क्या चीज, कमी कमीन ये वर्ड है जो हमारे यहाँ बोला जाता है। What is this? क्या ये तकबर नहीं इसे झलकता? तो क्या थे हजरत बिलाल, बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या थे फिर? क्या कभी आप उनके लिए वर्ड बोल सकते? वो तो गुलाम थे, काले स्याह हबशी, कोई उनका स्टेटस नहीं था। कौन सी, कुरैश से थे क्या, बनू हाशिम से थे क्या? नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यहां आगे आगे उनके कदमों की चाप सुन रहे हैं, और हम क्या चीज है, हम क्या चीज है, किस चीज का हमें तकब्बुर और मान और अपनी बड़ाइयां हमारे अंदर भरी, किस चीज का? चार लफ्ज आ गए इसलिए, कुरान पढ़ना आ गया इसलिए, हमने क्लासें लेनी शुरू हो गई इसलिए। तो ये इस खन्नास को दिमाग से निकाल दे, वरना ये हमें लेके डुबो देगा, डुबो देगा हमें। अगर हमारे अंदर तकब्बुर है, तकबर, ये दोनों चीजें हैं, हक को ना मानना और लोगों को हकीर समझ। मत करें दूसरों की बुराइयां, अगर हम अपने आप को हकीर समझते होंगे ना, तो हमारे मुंह से दूसरों की नहीं बुराइयां निकलेंगी। और अल्लाह ताला हमें माफ कर दे कि कहीं हमारे दिल में कभी किसी दिन एक लम्हे के लिए भी ये एहसास आया हो, हम किसी पे हंसे हो, किसी को छोटा समझा हो, किसी की तरफ ऐसे देखा हो कि ये कोई चीज नहीं, क्या किसी बात की वजह से भी। इससे आगे मैं क्या जाऊं, अगर यहां ही इस आयत को ही हम पकड़ के बैठ जाएं, तो आगे क्या हम सबक करें? इसको ही, एक आयत को पकड़ के ही हम अप्लाई करना शुरू कर देना, तो यहीं पे सबक हमें खत्म कर देना चाहिए पहले, इसको अपनी जिंदगी में लाएं कि हमारे अंदर से तकब्बुर खत्म हो जाए, तकब्बुर नाम को ना रहे, और के लिए वो सारे काम करें जो कि हम सोचते हैं मेरी शान के लायक नहीं है। मैं कैसे वैक्यूम कर दूं मस्जिद में, मैं कैसे एक टिश्यू उठा दूं, मैं कैसे किसी गरीब का हाथ पकड़ लूं, मैं कैसे फलां के घर चली जाऊं, मैं क्यों उसको कॉल करूं, वो मुझे कॉल करे, मुझे क्यों नहीं उसने सलाम में पहल की, मैं क्यों उसको सलाम करूं, क्या ये सब इसलिए कि मैं बड़ी चीज हूं, राइट? इसलिए कि मैं बड़ी चीज हूं ना, सिंपल एज दैट, मैं बड़ी हूं उससे, मैं उससे बढ़ के हूं, इसलिए मैं फोन नहीं उठा सकती कि मैं उसको फोन करूं, वो कर लेना। उसने सलाम नहीं किया, उसने मुझे इनवाइट नहीं किया, उसने मुझे आगे बढ़ के वेलकम नहीं किया, उसने मुझे पूछा नहीं, इट मीन्स कि मैं समझती हूँ ना कि मैं बड़ी चीज हूँ। और एक आजी का भी तकब्बुर होता है कि इंसान ये सोचता है कि मैं बड़ी आजिज मिजाज हूँ जी। हाँ, कहीं शैतान डबो ना दे इसी चीज के ऊपर हमें। बी वेरी केयरफुल। ला जरम अल्लाह आलम मा युसिरून व मा युलिनून, कोई शक नहीं कि बेशक अल्लाह ताला जो कुछ वो छुपाती है और जो जाहिर करते हैं सब कुछ जानता है। अगर छुपा हुआ है दिल के अंदर कहीं तकबर, जितना मर्जी कहते रहे नहीं जी मेरे अंदर कहाँ तकबर, मैं तो बड़ी आजिज मिजाज, मैं बड़े मिस्कीन बंदे हैं। मिस्कीनी तुम्हारी क्या है? तुम्हारे तो बात में मिस्कीनी नहीं, तुम्हारे काम में मिस्कीनी, क्या मिस्कीनी? अल्लाह ताला जानता है जो तुम्हारे अंदर है, उसको खूब मालूम है। तुम ना जाहिर करो तो कुछ भी बोलते रहो, कहते ये हैं और अमल कुछ और है, तो जो छुपाते हैं वो उसको पता है, और जो ऐलान करते हो जाहिर करते हो वो भी उसको पता है। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, क्या हमारे लिए इतना काफी नहीं होना चाहिए? बेशक वो नहीं मोहब्बत करता तकब्बुर करने वालों से। अच्छा, अगर वो नहीं मोहब्बत करता उनसे जो अपनी बड़ाई के एहसास में मुब्तला रहते हैं, वो उसके नजदीक कुछ नहीं है, तो क्या ये हमारे लिए काफी नहीं है? अब मुझे बताएं कि जिनसे वो मोहब्बत करता है सिर्फ वो लोग ही जन्नत में जाएंगे, जिनसे अल्लाह मोहब्बत नहीं करता वो कैसे जन्नत में जा सकते हैं? चाहे खुद को अपने आप को कितना ही कुछ कहते रहे, लेकिन अगर अंदर तकब्बुर है तो अल्लाह ताला को मोहब्बत नहीं तकब्बुर करने वालों से, तो जो जिससे अल्लाह को मोहब्बत नहीं वो कहाँ जाएंगे बताएं? जहन्नुम में डाले जाएंगे। वइदा क़ीला लहुम, और जब उनसे कहा जाता है ना, माज़ा अंज़ला रब्बुकुम, क्या कुछ नाजिल किया तुम्हारे रब ने, कालू असातीरुल अव्वलीन, ये है ना तकब्बुर, और कुछ नहीं क्या नाजिल किया, वो ही पुराने लोगों की कहानियां। जब उनसे पूछा जाता है ना अल्लाह ताला के कुरान में क्या है कि क्या बातें, असल में अव्वलीन मुखातिब तो कुरैश थे, तो उनसे अरब वाले आके पूछते थे कि यार ये क्या कहता है, ये जिसने नबुवत का दावा किया क्या कहता है ये? वो कहता है कि उसके ऊपर कोई वही उतरती है, तो क्या कहते, नहीं, बस वैसे ही पुरानी कहानियां सुनाता रहता है और कुछ नहीं है। बहुत जगह कुरान पाक में ही आता है कि ये क्या कहते हैं कुरान को, असातीरों लगवा दी, पुरानी कहानियां, किससे कहानियां लेके बैठा है, कभी याद कभी समूद ने कौमों की, मूसा अलैहि सलाम के किस्से, बस बार बार वही किस्से हैं। अच्छा आपको ना हैरत होगी, बस मुसलमान भी ऐसी बातें कहते हैं, हमने तो कुरान पढ़ के देख लिया, क्या है बस एक कौम का किस्सा उसका किस्सा बस यही है उसके अंदर, तुम्हें नहीं ये नहीं पता कि काफिर क्या कहते थे इस कुरान को, और भी कहते थे, लेकिन स्पेसिफिकली नजर बिन हारिस जो है उसके बारे में आता है कि वो ये कहता था, ये बात कहता था कि ये किस्से कहानियां, और इसके तोड़ के लिए उसने क्या किया कि उसने भी मजलिस से सजाना शुरू कर दी, और सिंगर्स को लेकर आता था, ऐसी लौंडियां जो सिंग करती हैं, उस जमाने में लौंडियां ही गाती थी ना, तो उनको लाता था कि ये जरा जिसको हम कहते हैं ना कल्चरल शो, तो वो सजाता था, कल्चरल शो करता था, एंटरटेनमेंट का इंतजाम करता था वो। तो जैसे आज कल्चर और सकाफत के नाम पर कितने शोज होते हैं, तो उस जमाने में इस तरह था, उस जमाने में कोई स्टेज नहीं था, लेकिन जैसे भी वो था वो उस जमाने के कल्चरल शोज थे और उस जमाने की एंटरटेनमेंट थी, तो वो कॉन्सर्ट करवाता था, यानी वो सिंग करती थी, कॉन्सर्ट था ना, तो मकसद क्या था कि लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके कुरान ना सुने और मेरे पास आए, और इसके लिए वो किस्से कहानियां भी लेकर आया था, जिसको हम कहते हैं ड्रामे फिल्में। अब वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनके पास स्क्रीन नहीं थी तो वो मुंह से बोल के बताते थे, तो वो स्पेशली लेकर आया इस तरह के किस्से कहानियां, इतने सनसनीखेज, इतने जबरदस्त रुस्तम मस्तवन यार के किस्से, और वो सुनाता था, क्यों, मकसद क्या था? ये वो लोग, जाहिर है कहानियों में बड़ी दिलचस्पी होती लोगों को, तो यहाँ बैठ जाए और वहां ना जाए, आप सरसलम की बात ना सुने, लोग वहां जाते थे ना, तो उसने क्या किया कि इस तरह से मैं इनको उधर से खींच के इधर ले आऊं। आज आप देखें, इसके साथ तो नहीं लेकिन वैसे आप, मैं बात कर रही हूँ, देखिए एक जगह कॉन्सर्ट हो कैसे भरा होता है, जैम पैक, और लोग खड़े होते हैं, यानी वो पता नहीं कितनी देर जो वो गाते रहते हैं, तो ये लोग खड़े में, कुर्सियां भी नहीं होती, एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, इतना हजूम के हद से ज्यादा, और दूसरी तरफ मस्जिद देख ले, थोड़ी देर खड़ा होना पड़ जाए तो क्या हाल होता है, अव्वल तो मस्जिदों के हालात ही क्या हैं, रमजान के अलावा वहां पे बिल्कुल ही सुनसान होती हैं, एक आध सफ के अलावा तो होती नहीं। सब मस्जिदों का हाल देख लें, और कॉन्सर्ट्स का हाल देख लें, सिनेमाओं का हाल देख लें, हालांकि पैसे देके जाना पड़ता है वहां, तो वो एक एंटरटेनमेंट है ना, और इधर अल्लाह की बात हो रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह की बात बताते थे, तो हर दौर में ऐसे लोग मौजूद रहे हैं जो लोगों को इस तरफ से हटा के दूसरी तरफ लगा देते। आज भी आप देखें लोग जो ड्रामों के एडिक्ट हो जाते हैं, पहले जमाने में तो एक एक किस्त तो आप देखते थे एक एक हफ्ते में, तो उसके बाद चलो, तो सुना है कि बाज ड्रामे ऐसे होते थे कि गलियां सुनसान हो जाती थी, सब लोग घरों में घुस जाते थे वो ड्रामा देखने के लिए। अब ये है कि हमें हर ड्रामा ये इंटरनेट पे मिल जाता है, तो लोग सुना है कि पूरी पूरी रात पूरे दिन देखते रहते, उनको इतनी सस्पेंस होता है ड्रामे में कि वो कहते आगे क्या हुआ आगे क्या हुआ। तो क्या है तो वो झूठी कहानियां ही ना, लेकिन कितना वो अपने आप के अंदर इन्वॉल्व कर लेती, तो उनको हम क्या कहते हैं कि वो देखो जरा कैसे लोग थे, आप सरसर उनको छोड़ के वहां पे जाके किससे कहानियां सुनते थे, और खुद हम क्या कर रहे हैं। और हम अपने आप को कहते हैं कि हम ईमान रखते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हमारा हाल क्या होता है। जबकि एक तरफ कुरान है, फिर कहते हैं कुरान के लिए हमें वक्त नहीं मिलता, क्या करें टाइम ही नहीं है। जब टाइम आपका इन चीजों में गुजरेगा तो टाइम निकलेगा कैसे, जब टाइम फेसबुक पे गुजरेगा, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या जो भी चीजें हैं, सबको पता है उनके नाम क्या लेने, उन सारे वो टिकटॉक बना रहे हैं और लगा रहे हैं और लोग उसको देख रहे हैं, इन्हीं चीजों में टाइम गुजरेगा। यही सारी चीजें थी ना जो वो उस वक्त करता था। अब उस जमाने के अंदर इंटरनेट जैसी चीज नहीं थी, और जितनी फैसिलिटीज थी उसके मुताबिक उस जमाने की ये एंटरटेनमेंट थी, आज की इस तरह की हो गई, आगे आगे वक्त में पता नहीं कैसी कैसी आती जाएंगी। लेकिन जब वो चीजें टाइम ले लें, तो मुझे बताओ कुरान का कहां से टाइम निकलेगा। निकाल के देखिए जरा इन चीजों को, सब इन चीजों को निकाल दें जिंदगी से, क्यों ना टाइम निकलेगा कुरान के लिए, जरूर निकलेगा फिर। लेकिन हमारे कई मिनट तो छोड़े, घंटे इन चीजों में गुजर जाते हैं, एक एक स्टेटस और पता नहीं क्या देखने में, और खुद शेयर कर रहे हैं, कभी इधर से आ रहा है कभी इधर से जा रहा है, क्या हो रहा है उसके अंदर ही कितना टाइम गुजर जाता है। और दीन भी हम पढ़ रहे हैं तो व्हाट्सएप से, वो वहीं से हम अपना दीन लेते हैं, किसी ने कुछ शेयर कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, कोई एक वीडियो आ गई वो देख ली, हम सोचते हैं बड़ा हमारा दीन मुकम्मल, कुरान की तरफ नहीं आना बस। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान के अजाइबात तो कभी खत्म ही नहीं हो सकते, ये का मुजजा है इसके, फरमाया ऐसा नहीं। अच्छा बास लोग एक दफा कोर्स करके ना सोचते हैं हम तो मुकम्मल हो गए, बस कोर्स जो हमने कर लिया, हमने तो पढ़ा हुआ कुरान, उनके लिए मुकम्मल हो गए। जबकि आपसे सर हमने क्या फरमाया, इसके मुजजे इसके अजाइबात तो कभी खत्म ही नहीं हो सकते। दुनिया की किताबें आप पढ़ ले एक दफा दो दफा, चलो 10 दफा पढ़ लेंगे उसके बाद नहीं आप पढ़ सकते, लेकिन ये ऐसा कलाम है कि जो आप पढ़ते जाएं हर दफा नया असर करेगा। यकीन करें मैं पढ़ाती हूँ ना, मुझे पता है, जब आपने पहले पढ़ाया होगा तो किसी पता नहीं हो, अल्लाह जाने उस वक्त क्या दिल की कैफियत क्या होती है, हालात क्या होती हैं, उसके मुताबिक वो आयात कैसे असर करती हैं, आप किस सिचुएशन के होते हो में होते हो उसके मुताबिक वो आयात जवाब देती हैं आपको। अजायबात इसके कभी खत्म ही नहीं होते, और फरमाया जितना भी इसको पढ़ लें ये कभी पुराना नहीं होता। तो फिर मुझे बताएं वो लोग जो कहते हैं हमने कोर्स कर लिया, हमने 2 दफा कर लिया, हमने 1 दफा कर लिया, तो वो तो समझते ये पुराना हो गया ना, चलो आप कोई और चीज सीखते, ये तो पढ़ लिया हुआ है। आप सल्लम की बात से सच्ची बात किसी की नहीं हो सकती, हमारी बात झूठी है अगर हम कहते हैं हमने पढ़ लिया ना बस ठीक है, अब और कितना पढ़े कुरान को, कोई और सब्जेक्ट पढ़ाए ना, नहीं ये कभी पुराना नहीं होता, ये आपके नबी ने फरमाया। आप कैसे कहते हैं कि हमने कर लिया कोर्स तो बस ठीक हो गया, तो ये कुरान का मोजजा है, और इस मोजजे से महरूम है वो लोग जो कुरान को नहीं पढ़ते, जो इसकी तरफ नहीं आते। तो ये कहते हैं असातीरुल अवलीन, पुराने लोगों की कहानियां जी, उनके किस्से हैं। और ऐसे लोग अक्सर वो लोग होते हैं जो लोगों को बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं, जो लोगों के अंदर बड़े इंटेलेक्चुअल बने होते हैं, मैं बड़े PhD बड़े, तो ऐसी बातें लोगों के अंदर फैलाते हैं। अभी मुझे पिछले दिनों किसी ने बताया, मैं बड़ी हैरान हुई। अब ये देखें मैं आपको मुसलमानों की बात बता रही हूँ, काफिर की नहीं बता रही, और अपने मुल्क में किसी की बात बता रही हूँ, कि उन्होंने कहा कि देखिए मुझे कोई एक मिली, वो PhD है,
तो वो उन्होंने कहा है कि जी जब हदीस लिखी गई थी ना, तो वो तो सारे आदमियों ने लिखी थी, औरतों ने तो नहीं लिखी ना हदीस, तो वो आदमियों ने लिखी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारी अपनी अपनी बातें उसमें डाल दी, तो उनमें औरतों की फेवर में बात नहीं है, सारी आदमियों के फेवर में है। मैंने जिस बंदी ने मुझे कहा, मैंने कहा उससे जाके पूछना जो जिसने PhD की हुई, कि तूने कितनी हदीस की किताबें पढ़ी है, कितनी पढ़ी है हदीस की किताबें, ये बोहतान सहाबा पे, इंसान का ईमान कैसे रह सकता है जो बोहतान बांधे सहाबा के ऊपर, और आप सरसल ने मना फरमाया इस पे कि मेरे सहाबी के ऊपर कभी कोई बात ना करना, तुम लोग पहाड़ों के बराबर भी सदका कर दो तो मेरे सहाबी की एक मुट्ठी बराबर सदके के इक्वल नहीं हो सकती वो, तुम उनके ऊपर तान कर रहे हो, तुम्हारा ईमान किधर गया फिर? और ये हम अपने आप को कहते हैं मुसलमान, ये झूठ नहीं है तो और क्या क्या मतलब है कि सहाबा ने खुद अपने फेवर के अंदर, मर्दों की फेवर के अंदर उसके अंदर हदीसें बता दी, और चूंकि औरतों बेचारियों ने तो लिखी नहीं हदीस, तो उनकी तो फेवर में कोई है ही नहीं। मैंने कहा उससे जरा पूछ के मुझे बताना उसने पढ़ा कितना है, फिर बात करें। ये है हमारे आज के हालात, और इतनी तकलीफ होती है ना ये सुन के। और फिर उसके बाद जब हम लोगों को कहते हैं खुदा के लिए आके इल्म लो, तो कहते नहीं नहीं हमें सब कुछ पता है, अरे पता का ये हाल है। अब जब ये बातें करते हैं ना जो कि ये पुरानी बातें हैं जी, पुराने किस्से हैं, लियहमिलु औजारहुम कामिलतन यौमल कियामत, ताकि वो उठाएं अपने बोझ पूरे के पूरे कियामत के दिन, और सिर्फ अपने बोझ नहीं, वो मिन औजार अल्लदीना युदल्लूनहुम बगैर इल्म, और उनके भी बोझ उठाएं जिनको ये गुमराह करते थे बगैर इल्म के, खुद कुछ नहीं पता। कुरान में ये कहां लिखा है? कुरान में तो है ही नहीं। तो तुम्हें कुछ पता भी है? तुमने कितना कुरान पढ़ा? यकीन करें कितनी दफा पढ़ा के भी भूल जाता है कि क्या ये बात थी इसके अंदर, क्या क्या था, किस तरह से कही गई, हमें कौन सा अजबर याद है हर चीज, लेकिन कुछ इल्म नहीं होगा। और बैठे बैठे, यानी मुझे अफसोस इस बात का होता है। हाँ देखें, मेडिकल के लिए भी कितने साल पढ़ना पड़ता है, PhD के लिए कितने साल पढ़ना पड़ता है, इंजीनियर बनने के लिए कितने साल पढ़ना पड़ता है, लेकिन हमारे हालात ये है कि दीन के मामले में हर कोई आलिम है, हर कोई अपने आप को इतना बड़ा समझता है कि हर कोई इंटरप्रेट कर रहा है कुरान की आयतों को, हर कोई खोल के बैठ के तो उसको तशरीहें करना शुरू हो गया, तफसीरें करना शुरू हो गया, और ये सोच लिया कि हम तो बड़े आलिम हैं, और पीछे देखे उनके बैकग्राउंड के क्या इनका इल्म है, कुछ भी नहीं। जरा पूछें जहां से भी आप जाके तालीम ले रहे हैं, जिन लोगों से भी, वो कह रहे हैं जी मैंने तो फलां जगह से पढ़ा, मैंने तो फलां को सुनती हूँ, उस जिससे जिसको सुनती हो उसको पीछे वो क्या है, उसकी बैकग्राउंड, उसने किन मशायख से सीखा है, ये तो सोच लो। ऐसे लोग खुद तो भटकते हैं, दूसरों को भी भटकाते हैं, इसीलिए कुरान कहता है वो कयामत के दिन, ली का मतलब है, ली दो तरह के हैं, एक ली लामे कई होता है, जिसका मतलब था ताके, जिस तरह जैसे मैं अभी कह रही हूं ताके वो उठा ले, कि वजह यानी आगे बयान हो रही है, किस लिए वो ऐसे कहते हैं ताकि उस दिन उठाए ना, और दूसरा लामे आकिबत होता है, उसको कहते हैं लामे आकिबत, ये दोनों ही हो सकता है, ये ली जो है ली याहमिलू का ली, लामे आकबत का मतलब क्या, उसका अंजाम क्या होगा वो आगे बयान हो रहा है। यानी ऐसे लोग जो ये कहते हैं ना कि ये पुरानी कहानियां, उनका अंजाम कयामत के दिन ये होगा कि वो अपने बोझ भी उठाएंगे, और उनके बोझों मिन औजारहिम का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे एक बात याद रखिए, मिन एक होता है तबईजिया, तबईजिया का मतलब होता है बाज, बाज बोझ उनके भी उठाएंगे, यहाँ पे बाज का माना नहीं है, ये मेन जो है ना ये मेन जिन्स का है, यानी इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि इसको तबईज का मेन नहीं लेंगे बल्कि इसको जिन्स का मेन कहेंगे, यानी कि बाज उनके बोझ नहीं उठाएंगे, को कुछ उनके बोझ उठा लिए, अपने तो पूरे उठाए, उनके कुछ उठा लिए, ये मतलब नहीं है यहाँ पे, ये इसका मतलब है उनके भी पूरे के पूरे बोझ उठाएंगे और अपने भी पूरे के पूरे बोझ उठाएंगे, और ये ना समझो कि उनके बोझ कम हो जाएंगे जिनसे उठा लिए इन्होंने, कि उनका तो खुद ले लिया, जैसे आपने कोई ग्रोसरी किसी के हाथ से खुद पकड़ ली तो उसका हाथ तो हल्का हो गया ना, ऐसा नहीं है, उनके बोझ उतने ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि जो लीडर हैं या जो ये जो हमारी, तो खैर लीडर उनको क्या कहेंगे, हमारे तो दावतों में हमारी मजलिसों में आप देखें कुछ लोग बड़े बोल रहे होते हैं, बहुत बोल रहे होते हैं, और उनके पास पीछे इल्म कुछ भी नहीं होता। अगर आप उनसे पूछे ना, आपने कितनी जगह से दीन की तालीम ली, किस इंस्टीट्यूट से आप पढ़े, किन मशायख से आपने इल्म लिया, कौन आपके असातज़ा कराम है, तो उनका सारा इल्म क्या होगा, इंटरनेट। इंटरनेट पे मैंने ये पढ़ा, मैं तो बड़ी रिसर्च करती हूँ, मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं तो यहां से पढ़ती हूँ, मैंने तो बड़ी किताबें पढ़ी, मैं तो फलाव करा। आपके मशायख कौन है, जिस शेख के पास आप बैठिए, आप देखेंगे पीछे कुछ भी नहीं होगा। तो ये लोग अपने बोझ भी उठाएंगे और दूसरों के पे फुल बोझ उठाएंगे, जिनको इन्होंने भटकाया बगैर इल्म के। और भटकने वाले को भी शाबाश है कि जो बगैर इल्म के है, ये भी उसकी बातों में आ गया, फिर उसकी भी अकल के ऊपर आफरीन है कि जिसने ये ना पूछा कि तेरे पास इल्म क्या है जो तू ये बात कर रहा है। अब वो दलीलें भी बहुत देंगे, वो बातें भी बड़ी फोर्सफुल करेंगे, लेकिन बगैर इल्म के, ठोस इल्म नहीं है। तो ये जो अक्सर लोग ऐसी बातें करते हैं, आप पूछ के देख लें, आपको खुद पता चल जाएगा। और फिर उनकी बातें फैलाने वाले भी आगे से आगे फैलाते हैं, बहुत केयरफुल रहना चाहिए ऐसी बातों को आगे फैलाने से, क्योंकि अगर आप उनके एजेंट बन गए तो जिस तक भी फैली वो बात, जिस तक भी आगे गई, बहुत आसान है व्हाट्सएप पे आगे फॉरवर्ड करना बातों को, कभी सोच भी लिया करें ये बात किसने कही है, आपको उसका पता है जिसने ये वीडियो बनाई या जिसने ये बात लिखी है, उसका पता है वो कितना ऑथेंटिक है। हो सकता है कोई झूठा हो सकता है कोई काफिर हो, उसने बस ऐसे ही मुसलमानों के अंदर साजिशों के लिए ऐसी बातें घड़ के और रख दी हो। तो अगर नहीं इल्म ना, तो मत फैलाया करें आगे, जब तक ठोस पता ना हो कि ये बात ऑथेंटिक है। एजेंट मत बने उनके जो बगैर इल्म के लोगों को भटका रहे हैं, बगैर तहकीक के आगे आगे करते रहना। तो अब वो देखें कयामत के दिन ये नहीं कह सकेंगे, अरे हमें तो पता ही नहीं था, हमें कहाँ पता था, और हमें पता होता तो हम भी ना आगे करते बात। इसका मतलब ये एक्सक्यूज कयामत के दिन काम नहीं आएगा, ये कोई नहीं कह सकते कह सकेगा। आज तो किसी के साथ बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तो इसलिए नहीं कुरान पढ़ती कि मैं कयामत के दिन कह दूंगी अल्लाह मुझे पता ही नहीं था। यानी वो सोचती है कि अल्लाह ताला सुन नहीं रहा उसकी ये बात। सुभान अल्लाह, अल्लाह हू अकबर, वो किस खुदा के सामने जाके ये बात कहेगी जिसको शायद पास्ट का पता नहीं कि दुनिया में ये क्या कहती होती थी। हाँ, ऐसा खुदा समझते हैं आप, अपने खुदा को ऐसा समझते हैं, वो इस वक्त भी तुम्हारी ये बात को सुन रहा है कि मैं तो जाके वहां पे कह दूंगी। यानी आपका बच्चा, आप उसके सामने ही खड़ी हुई है और वो किसी को कह रहा है मैं तो अम्मी को कह दूंगा कि मैंने इसलिए ये झूठ बोला था, मैं तो अम्मी को कह दूंगा कि मैंने इसकी, और आप सुन ही रही हैं सामने। तो आप सोचें जरा कि हम कितनी गलत बात मुंह से कहते हैं जब ऐसे बहाने करते हैं, और क्या समझते हैं अपने रब को, वो तो हमारी रग रग से वाकिफ है। तो ये इल्म का ना होना किसी को बचा नहीं देगा वहां पे, कि ये कहे हमने इसलिए नहीं पढ़ते ना, हमें अमल करना पड़ेगा, अमल तो हमने करना नहीं है, तो हम कह देंगे हमें कहाँ पता था, हमें तो पता ही नहीं था। तो पता करना ये आपकी जिम्मेदारी है, अवेयरनेस होना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वहां पर मैं और आप ये कहकर छूट नहीं सकते कि क्या करते हमें नहीं पता था। और ये जो आज बड़े सियाने अकलमंद बनते हैं ना, बड़े साइंस को लेके और दलीलें देते हैं और फिर इंटरनेट से पता नहीं कहाँ कहाँ से दलीलें देते हैं, वो सब ये सोच के उनको डर जाना चाहिए कि कयामत के दिन अपनी तो मुसीबत पड़ेगी पड़ेगी, दूसरों की भी मुसीबत अपने सर उठानी पड़ेगी। तो जो भी ऐसे कहते हैं कि मैंने नहीं कुरान को समझना या मैंने नहीं रसूल की बात को समझना, और इनके करीब भी नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको ये लगता है कि पुरानी बातें हैं, तो वो भी ये समझ लें कि कुरान क्या कह रहा है। तो क्योंकि हदीस में आता है कि जो किसी काम की तरफ रहनुमाई करता है ना, तो जितने लोग उसके कहने पे करेंगे उन सब का बदला इस रहनुमाई करने वाले को मिलता है, चाहे आप बुरी की तरफ कर लें चाहे अच्छी की तरफ कर लें। जैसे हदीस में आता है जिसने हिदायत की तरफ दावत दी तो उसको भी उतना ही अजर मिलता है जितना हिदायत पाने वाले को। इसीलिए आपको कहते हैं ना, आप आगे और लोगों को बताएं, आप कोई भी आपकी वजह से हिदायत पा गया, ये हदीस है, जिसने आपने हिदायत की दावत दी ना, और अगर वो आ गया ना, तो बस वो जो भी करता रहेगा आपका अकाउंट भरता जा रहा है, और उसके अजर में कमी नहीं होनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह ये भी है कि जो बगैर इल्म के लोगों को भटकाता गया, ना उसके पास इल्म था, ना आगे पहुंचने वाले के पास था, और वो भी आगे आगे बात करता गया, तो फिर सबके ऊपर बोझ आएगा। किसी को भी गुमराही की तरफ बुलाने से पहले, किसी को भी ऐसी बातें कहने से पहले इंसान को बहुत सोच लेना चाहिए। एक वाकया किसी ने शेयर किया था कि अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला माफ करे, किसी ने किसी पोर्न वेबसाइट को सब्सक्रिप्शन ली भी थी, और उससे जो गंदा मटेरियल आता था ना, वो लोगों को उसने मतलब ईमेल में भेजता था, या जो भी उनको आगे शेयर होती थी, तो उसने वो जो भी उसकी थी सब्सक्रिप्शन चल रही थी। एक दिन अचानक उस बंदे का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। अब जो जिन लोगों तक पहुंच रही थी ना वो गंदी मटेरियल, वो पहुंचता जा रहा था। अब उनको जरा फिक्र हो गई कि भाई देखो, ये तो दुनिया से चला भी गया और हमें आती जा रही, क्योंकि उसने वो ऑटोमेटेड जो भी उसमें डाला हुआ था, मुझे अब पूरा नहीं पता, नहीं ये सच्चा वाक्य है जिन्हें सुनाया था। अब वो उनको मिल रही हैं, उन्होंने ना उसको वेबसाइट को किया उनको कि भाई आप लोग ये बंद कर दें, उन्होंने कहा इसका पासवर्ड लगाएं, इसका ये लगाएं, तो फिर आप बंद कर सकते हैं। अब वो पासवर्ड भी किसी को नहीं पता था, अब वो दुनिया से चला गया। आप देखिए पीछे उसके वो गंद लोगों तक जाता जा रहा है, और उसको इसकी गुनाह मिलता जा रहा होगा, वो जहां पे भी होगा उसको तो इसकी सजा मिल रही होगी ना। तो इंसान कभी दुनिया से चला जाता है और उसकी बुराई फैलती ही जा रही है, तो कितना केयरफुल रहना चाहिए। अला सा मा यजीरून, कितना सुन लो। अला का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना, कान खोल के सुन लो, जरा तवज्जो करो, देखो कितना बुरा है जो बोझ उठा रहे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। तो बोझ तो कभी भी इंसान को अच्छा नहीं लगता, आपको पता है, बोझ तो हमेशा, अब ग्रोसरी भी उठा लें कभी कभी अपना बच्चा, उसका भी बोझ लगने लगता है, इंसान कहता है मेरे बाजू थक गए, कोई और उठा ले। तो गुनाहों का बोझ, अपने गुनाहों का काफी नहीं कि दूसरों को भी उठा के दूसरों का भी अपने ऊपर ले आए। कद मकर अल्लदीना मिन कबलिहिम, तहकीक चालें चली इनसे पहले भी लोगों ने, फात अल्लाह बुनियानहुम मिन अलकवायदी, तो अल्लाह ताला ने उनकी इमारत को बुनियादों से, अल्लाह ताला आया, फखर अलैहिम सक्फ मिन फौकहिम, तो गिर पड़ी उन पर छत इनके ऊपर से, वाताहुम अलअज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून, और उनके ऊपर अजाब वहां से आया जहां से वो सोच भी नहीं सकते थे, उनको शऊर भी नहीं था। यानी एक तो बुनियान जो है ना, इमारत जो है वो होती है प्रोपोगेंडा की, वर्चुअल इमारत ना, प्रोपोगेंडा, ऐसी बातें, ऐसी चीजें फैलाना, ये भी तो इमारत है ना, एक एक फिजिकल इमारत भी होती है। तो दोनों इमारतें ही यहाँ पे मुराद हो सकती हैं, कि आप इनसे पहले भी लोगों को देख ले, तो हिस्ट्री उठा के देख ले, लोगों ने बड़े बड़े मकर किए। उन्होंने फॉर एग्जाम्पल, इसराइली रिवायात में आता है कि नमरूद जो था, उसने तो एक फिजिकल इमारत बनवाई, उसने कहा मैं इसके ऊपर चढ़ के इसके खुदा को देख के आता हूँ, जरा 5,000 गज ऊंची इमारत, यानी 15,000 फुट तक हो गई उसने बनवाई, और उसने कहा मैं देखूं जाके, फिर वो इमारत ऐसी गिरी। ये भी एक इमारत है, फिजिकल इमारत। लेकिन इसके अलावा आप देखें, हर दौर में लोगों ने पैगंबरों के ऊपर, अल्लाह और उसके कलाम के ऊपर बातें की, और प्रोपोगंडा की इमारतें बनाई। जैसे आज के दौर में भी कभी रसूल के कार्टून बना दिए जाते हैं, कभी कोई बातें, कभी कोई किताबें शाये कर देता है, कभी कोई मीडिया के ऊपर प्रोपोगंडा है, उन्होंने शादी क्यों कर ली उनके साथ इतनी छोटी उम्र में, उन्होंने इतनी शादियां क्यों की, उन्होंने ऐसे क्यों किया, उन्होंने, ये सब प्रोपोगंडाज है। और आप देखेंगे ये इतना जो मर्जी कर ले, लेकिन इनके फिर प्रोपोगंडाज, इनकी ये जो थेरीज, इनकी जो ये बातें, या दीन के मुकाबले में, इस्लाम के मुकाबले अपनी थेरीज निकाल लेना, ये जितने भी नजरियात है ना, ये अपनी मौत खुद मर जाते हैं, यानी इनकी इमारत खुद ब खुद गिर जाती है। चाहे मॉडर्निज्म के नाम पे हो, चाहे किसी भी नाम पे हो, आप देख लेंगे उस अगला दौर आएगा कुछ और बात हो जाएगी, अगला दौर आएगा कुछ और बात हो जाएगी, सारी थियोरीज खुद मर जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सूरज के ऊपर थूके तो अपने ऊपर ही थूक पड़ता है उसके, मेरे नबी की शान में एक जरा बराबर भी फर्क नहीं आया। जितनी मर्जी बातें कर रहे हैं, अपने खुद ही अपने ऊपर बवाल ला रहे। तो इनकी जो बुनियान है ना, वो अल्लाह ताला आता है और कैसे छतों के ऊपर, छतों इनकी छतें इनके ऊपर गिर जाती हैं। और ये वाली आयत ना बहुत, जिस वक्त 9/11 हुआ था तो बहुत करी गई थी, इसकी तशहीर की गई थी कि देखो इमारत अपनी छत के ऊपर गिर गई और ऐसे जो पूरी छत नीचे आ गई। अल्लाह आलम किसी आयत को इस तरह से तो नहीं कहीं फिट कर सकते खुद अपनी मर्जी से, मगर जो लोग भी ऐसे प्रोपोगंडास करते हैं या तौहीद के खिलाफ, जो लोग जिन लोगों ने भी, या इस दीन इस्लाम के खिलाफ जिन लोगों ने भी अपनी इमारतें बनाई, उनकी इमारतें उनके ऊपर ही आके गिर गईं, और ये ऐसी जगह से अजाब आया कि उनको शऊर भी नहीं था, उनको पता ही नहीं चला। और यहाँ पे बाज के रात में सुकुफ भी है, सकफ की सकफ कुफ सकफू यहाँ पे है ना, तो वहां पे सुकुफ भी है बाज, और वो सकफ की जमा है। तो सुकुफ क्या है? छतें, बेशुमार छतें। तो छतें मीन्स मल्टीपल जो मंजिलें होती हैं, एक से ज्यादा मंजिलें, वो सारी छत नीचे, छतें नीचे आ गई और सारी इमारत गिर गई। सुम्मा यौमल कियामत युखज़ीहिम, फिर कयामत के दिन, ये तो दुनिया में हुआ ना, दुनिया में भी उनके प्रोपेगेंडा, इमारत गिर गई, दुनिया में भी कुछ नहीं रहा, फिरौन ने भी कहा, नमरूद ने भी ऐसी चालें चली। देखो कितने पिछले कितने लोगों की आप उठा के देख लें, खुदाई के दावे कर दिए, कहाँ गए वो? अब आज तक भी लोग बातें कर रहे हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं वो लोग? उनका तो किसी को पता भी नहीं, उनका नामो निशान भी मिट जाता है, कौन कहने वाले, कौन करने वाले, कहाँ है वो लोग, कोई पता ही नहीं। ऐसी ऐसी किताबें भी लिखी नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ, ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडास की किताबें लिखी गई, पता नहीं कितने छुपते फिर रहे हैं आज। ये तुम इतने हो तो तुम आगे आओ ना, उनको अपनी जान के लाले पड़े होते हैं। तो ये तो दुनिया की इनकी रुसवाई है, आखरत में जो इनका अंजाम होगा ना, आखरत का जो है, सुम्मा यौमल कयामत युखज़ीहिम, कयामत के दिन जो वो अल्लाह ताला उनको रुसवा करेगा, और कैसे रुसवा करेगा, जो ये चालें चली, जो इन्होंने प्रोपोगंडास किए, जो इन्होंने बातें की, जो कहा सातीरु लवालीन है, ये अल्लाह के कलाम को ये कह दिया, जो कहानियां है कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है ये, बस ऐसे ही कहानियां लिखी हुई है। तो ये लोग आखरत में रुसवा होंगे, किस तरह के? व यकुलू, वो कहेगा, अईना शुरकाय्यल्लज़ीना कुंतुम तुशाक्कूना फीहिम, कहाँ है वो मेरे शरीक जिनके तो ये तुम इतना झगड़ते थे, दलीलें देते थे, ऐसे बातें करते थे, वो कहाँ है जिनको तुम बड़ा समझते थे, जिनके लिए तुम लोगों से लड़ा करते थे, बड़े आर्ग्यूमेंट देते थे ना, तो वो कहाँ है सारे? तो दुनिया में तो तुम्हें बड़ी बातें बनानी आती थी, तो किधर है? कालल्लज़ीना ऊतुल इल्म, अब इनको तो कोई बातें आएंगी नहीं, जवाब आएगा नहीं, तो कौन जवाब देगा? वो जिनको अल इल्म दिया गया, अल इल्म, सिर्फ ऊतु इल्म नहीं कहा गया, ऊतुल इल्म, अल इल्म, स्पेसिफिक कोई इल्म है ना, प्रॉपर नाउन है ना ये, अल इल्म वाले कौन है? जो दीन का इल्म रखते थे, जो वही का इल्म जानते थे, अहले ईमान, वो कहेंगे उस दिन, इन्नल खिज़्यल यौमा वस्सू अलल काफिरीन, वो आगे बढ़ के कहेंगे कि बेशक आज के दिन रुसवाई है और बुराई है काफिरों पर। रुसवाई का इसका मतलब अजाब अलग होगा, बेइज्जती, जिल्लत, कि इंसान कहता है ना कि रोटी खाने को ना मिले लेकिन इज्जत रहे, इज्जत बड़ी चीज होती है ना, तो उनकी जो जलील हो रहे होंगे वहां खड़े होके, और उसके अलावा अजाब अलग चीज है, वो सजा अलग चीज है, वो सू है। तो दुनिया में तो लड़ते फिरते थे ना लोगों से, दुनिया में तो बड़ी किताबें लिख रहे थे, दुनिया में तो मजलिसों में बैठते थे, बड़ी बातें करते थे ना, तुम किसी को बोलने नहीं देते थे, तो अब जवाब नहीं कोई आ रहा, जवाब क्या दे? इतनी सब कुछ तो सामने आ गया, तो फिर जाओ बुला के लाओ ना उनको जिनसे लिए तुम लड़ा करते थे। तो अब ना वो हैं जिनके लिए ये लड़ते थे, ना इनके पास कोई जवाब है। तो इल्म वाले, इसका यहां से इल्म की फजीलत भी आपको पता चलती है कि इल्म वालों की इज्जत कितनी होगी कयामत के दिन, कि वो बोलेंगे। तो अब देख लें ये सब, अब इसके बाद इनको अपना भी बोझ उठाना पड़ेगा, सारा का सारा काम मिला, खुद भी उठाएंगे दूसरों का भी उठाएंगे। तो इसका मतलब इंसान को बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, कुछ बोलने से पहले, कुछ किसी को बताने से पहले, किसी के आगे कोई बात रखने से पहले, आपकी बातों का इन्फ्लुएंस होता है लोगों के ऊपर। हो सकता है आपकी कोई बात सुन के कोई सीधे रास्ते पे आ जाए, या हो सकता है कोई मिसगाइड हो जाए। अब आपको पता ही नहीं चला आपने मिसगाइड कर दिया किसी को, ये इंसान के आसार होते हैं ना। हो सकता है कि आपने मिसलीड करने के लिए ना कहा हो, वैसे ही एक बात कह दी हो, लेकिन किसी दूसरे ने उसको पकड़ लिया। और हो सकता है आपने कोई नेकी की बात वैसे ही कही हो, लेकिन किसी ने उस बात को समझ के और तौबा कर ली हो किसी गुनाह से और नेकी की तरफ आ गया। लिहाजा वेरी केयरफुल रहे कि हम क्या बोल रहे हैं लोगों के आगे, ऐसे ही ना इधर की उधर मारते रहे। हमारी हर बात का कहीं ना कहीं असर है, कोई ना कोई कुछ ले रहा होता है। और ये भी कभी ना करें कि सुनी सुनाई बातों को आगे आगे चलाते जाएं, ये मत करें। सुनी सुनाई बातों को आगे करने की जरूरत नहीं है जब तक आपके पास ऑथेंटिक इल्म ना हो। हाँ, कुरान की बात को जरूर करें, जरूर ये शेयर करें, हमने आज ये पढ़ा, हमें आज ये समझ आई, जरूर करें ये शेयर। ये है हक, ये है ऑथेंटिक इल्म, ये बगैर इल्म के बात नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये डबल उठाए बोझ,